सत्संग जी, प्रेम से कहना, आज यहाँ नजफगढ़ के इस भवन पर दास को पहली बार ही, नजफगढ़ में ही शायद दास को पहली बार आज आने का अवसर प्राप्त हुआ, और सद्गुरु की कृपा से कारण भी इससे उत्तम तो कोई हो नहीं सकता कि यहाँ आना भी हुआ और सत्संग करने का ये जो अवसर, आप सभी संतों के बीच में आने का अवसर, सबके दर्शन करने का अवसर जो ये प्राप्त हो रहा है। तो जहाँ सत्संग के दौरान निरंतर परमात्मा का जिक्र, परमात्मा को पाने का जिक्र, कि ये भाईचारे का जिक्र, प्रेम का जिक्र, अनेक अनेक तरीक़ों से महापुरुषों ने जो ये आवाज़ दी, तो जहाँ ये जिक्र तो हो रहा है, वहीं संतों महापुरुषों के जीवन में ये बातें घट भी रही हैं, ये जीवन भी जिया भी जा रहा है। प्रेम का अगर जिक्र करते हैं संत महापुरुष, तो अपने जीवन में प्रेम पहले लेकर आते हैं, फिर प्रेम का आवाज़ देते हैं। परमात्मा का जिक्र अगर महापुरुष करते हैं, तो पहले इस परमात्मा के दर्शन करते हैं सद्गुरु की कृपा से, परमात्मा को जीवन में बसा लेते हैं, फिर परमात्मा का जिक्र शुरू होता है। भाईचारे का जिक्र कर रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने दिलों से नफ़रतें, दिलों से दीवारें गिरा दी हैं। और वहीं दुनिया में ये भी देखा जाता है कि जिक्र कई बार इतना प्रथम हो जाता है, इतना प्राथमिक बन जाता है जिक्र करना, कि फिर उस जिक्र के बाद मेरे जीवन में कोई अमल है कि नहीं, इस बात पे ध्यान कई बार नहीं जाता। और इसलिए युगों युगों से ज्ञान और कर्म के मेल का, ज्ञान और कर्म के संगम का, कि ये ज्ञान है, ये जिक्र है, ये बातें हैं, तो ये तभी तक मुबारक हैं अगर जीवन में भी वो कर्म हमारे हैं। दुनिया में प्यार की बातें बहुत मंचों से, बहुत ही स्थानों से की जाती हैं, पर कई बार देखते हैं तो उसके पीछे भी पता चलता है कि कुछ शायद और पाने की इच्छा थी। तो सामने बात तो प्रेम की, पर पीछे जब वो प्रेम का नकाब हटता है तो सच्चाई कुछ और। नारे तो बहुत लगते हैं भाईचारे के, पर उन नारों के पीछे शायद प्राप्ति किसी और चीज़ की, मकसद कोई और। तो ये संतों ने ही हमेशा से अंदर बाहर से एक होके प्रेम का अगर जिक्र किया है, तो जीवन में पहले प्रेम को लेके आए, अपने प्रेम से ही इतना जिक्र कर दिया कि शब्दों की ज़रूरत ही ना पड़ी। प्रेम की परिभाषा भी अगर बनाई गई, बताई गई, तो इंसान तो भूल बैठा है कि प्रेम कहते किसे हैं। इंसान तो सिर्फ सौदेबाजी को समझता है कि अगर सत्कार किसी का कर रहा हूँ तो इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे भी सामने से सत्कार मिल जाएगा। प्रेम अगर किसी के आगे दो शब्द प्रेम के बोलता हूँ तो इसलिए करता हूँ कि कल को वो मुझे मिले तो वो मुझे प्रेम से बोलेगा, प्रेम से बुलाएगा। तो इंसान का प्रेम सिर्फ ये सौदेबाजी बन के रह गया। और वहीं फिर संतों ने आके हमेशा से इस परिभाषा को इंसान की बदला, सत्य के साथ जोड़कर, परमात्मा के साथ जोड़कर इस परिभाषा को बतला कि जिसे तुम प्रेम समझते हो, ये सौदेबाजी से ज़्यादा कुछ नहीं। बाहर तुम रुपए पैसे के बदले वस्तुएं खरीदते हो, यहाँ तुम मीठी वाणी के बदले मीठी वाणी खरीदना चाहते हो। यहाँ किसी के आगे सर झुका के तुम किसी और का सर अपने आगे झुकवाना चाहते हो। तो इस सौदेबाजी में ही जब तक फंसे रहोगे, तो तब तक तुम्हें प्रेम का तो कुछ मालूम होने ही वाला नहीं है। तो फिर जब संत महापुरुष गुरु पीर पैगंबर जीवन में आते हैं, उनकी शिक्षाएं जीवन में आती हैं, उनका ज्ञान जब जीवन में बस जाता है तो फिर समझ आती है कि प्रेम कहाँ किसे जाता है। ये जो परहित का जिक्र हुआ कि परहित फिर धर्म बन जाता है कि किसी के मैं काम आ पाऊँ, वो मुझ में फिर इसलिए नहीं ये भाव आते कि इससे मुझे कुछ और प्राप्ति हो जाएगी। किसी के हित में अगर मैं आ रहा हूँ, उपयोग आ सकता हूँ, तो वही मेरे लिए सब कुछ बन जाता है। तो ऐसे ही भावों के साथ, ऐसे ही संदेश के साथ संत धरा पर आए, क्योंकि इंसान तो अपनी ही जीवन में ऐसे उलझा हुआ, चाहे वो सफलता के पीछे, अक्सर सफलता और विफलता का जिक्र हम सुनते हैं जीवन में कि बड़ा ही सफल जीवन है किसी का, बहुत ही कमाल का जीवन है किसी का, या फिर इसके विपरीत अगर किसी के लिए कहते हैं कि बड़ा ही असफल रह गया वो, बड़ा ही विफलता से भरा हुआ जीवन है सामने वाले का। तो ये सफलता और विफलता जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, या किसी को अगर हम सफल मानते हैं, तो हमारी कुछ गिनी चुनी परिभाषा, गिनी चुने पैमाने हैं कि देखो इसने कितनी उपलब्धियां कर ली हैं, कितनी इसने डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं, या फिर कितना इसने धन इकट्ठा कर लिया है, कितनी बड़ी इसकी फैक्ट्री हो गई है, या फिर कितनी ज़मीनें इसके पास हैं, कितनी इसकी खेतीबाड़ी हो गई है, या फिर कि देखो इसके घर में फला फूला परिवार बन गया है, कितना सफल परिवार बन गया है, बच्चे हैं, बच्चों के आगे बच्चे हैं, कितना अच्छा जीवन। तो इंसान कहीं ना कहीं सिर्फ इन्हीं परिभाषाओं को या इन्हीं उपलब्धियों को सफलता माने बैठा है, और इसी दौड़ में, खुद को सफल बनाने की दौड़ में, कि ये कुछ मैं प्राप्त कर लूँगा, उपलब्धियाँ मुझे मिल जाएंगी, तो मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा, सारे का सारा सार अपने जीवन का उसने इन उपलब्धियों के ऊपर बना लिया है। अगर ये सब जो मेरी लिस्ट में है, इसमें से कुछ मुझे मिल गया, तो मेरा जीवन सफल, कुछ रह गया या कुछ हाथ पल्ले नहीं आया, तो ऐसे लगता है कि जीवन तो ये तो कोई काम का ही जीवन नहीं है, इसका तो कोई मोल ही नहीं है, तो व्यर्थ ही जीवन रहा। अक्सर यही दोस्तों मित्रों में देखते हैं, तो आपस में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन इसी बात पे आते हैं कि कौन कौन सी गाड़ी चला रहा है, किसके पास कितनी अच्छी नौकरी है। रिश्तेदारी में देखते हैं तो यही कि उसका बच्चा कितना आगे पढ़ लिया मेरे बच्चे से, या मेरे बच्चे ने कितनी ज़्यादा कमाई कर ली उसके बच्चे से। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से अपने जीवन के सारे अर्थ हमने बना रखे हैं, सारा मूल जीवन का, सिर्फ इसी बात से। और फिर जब संत आके आवाज़ देते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये तुम जितना भी प्राप्त कर लो, तब भी जीवन की बाजी तो सफल होने वाली नहीं है जब तक जो पाने योग्य था उसको तुमने पाया नहीं, जो जानने योग्य था उसको तुमने जाना नहीं, जैसा जीवन तुम्हारा हो सकता था वैसा जीवन अगर तुमने नहीं बनाया, तो ये उपलब्धियां तो जितनी मर्जी तुम्हारे पास हों, फिर भी तुम असफल के असफल ही रहोगे। पर जब संत ऐसी बात करते हैं तो इंसान को ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जब से पैदा हुआ, जब से पढ़ाई लिखाई शुरू की, जहाँ जहाँ भी गया, जिस जिस से भी मिला, सबके पैमाने एक जैसे, कहीं धन, कहीं पढ़ाई, कहीं जमीन जायदाद, कहीं कितना किसके पास क्या है, अनेकों ऐसे पैमाने, किसी ने अपने पैमानों को यहाँ तक बात बांधा हुआ है कि घर में अगर पुत्र ने जन्म ले लिया तो ज़्यादा खुशी है, बेटी आ गई तो अब पुत्र की मांग है परमात्मा से। अनेकों उलझनों में इंसान ने अपने जीवन की सफलता विफलता को बांधा हुआ है। तो जब ऐसे संत आते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं या ऐसा कोई मैसेज देते हैं, पैगाम देते हैं कि ये सब तुमने पा भी लिया तब भी असफल के असफल रहोगे, तो विश्वास करना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसे कैसे हो सकता है? देखो कितनी दुनिया भागे चली जा रही है इन चीज़ों के पीछे, देखो कितने प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि जिसने प्राप्त भी कर लिया है वो भी खुद को असफल ही समझ रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अभी काफ़ी प्राप्त नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ रहता है, अभी तो सिर्फ इतना ही, उसको देखो वो कितना ज़्यादा सफल। तो ये एक इंग्लिश में वर्ड आता है विशियस साइकिल, हिंदी में शायद उसे दुष्ट चक्र कहा जा सकता है, कि ये एक ऐसा चक्र है जिसमें इंसान फंसा रहता है, बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि उसको लगता है कि यही सच्चाई है। कोलू का बहल जिस तरह चलता रहता है, पहुंचता कहीं भी नहीं। तो जब संत महापुरुष इस तरह की आवाज़ देते हैं, पैगाम देते हैं, तो उसको विश्वास ही नहीं होता। इसीलिए अक्सर परमात्मा की सच्चाई की बात तब तक ही सबको अच्छी लगती है जब तक उसके साथ ये उपाय हो कि देखो अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा। परमात्मा का नाम इतनी बार जीवन में लोगे, दिन में लोगे, तो ये काम पूरा हो जाएगा। तो परमात्मा भी अगर इंसान को चाहिए तो इसलिए चाहिए कि ये मेरी संसारिक सफलता में उपयोगी हो सके। रोज़ उठ के अगर नाम जपना है इस परमात्मा का तो कुछ हाथ पल्ले भी तो आना चाहिए, वरना अपनी नींद क्यों खराब की जाए। कहीं अगर सेवा करनी है तो उसके बदले में कुछ गुना तो वापस आना चाहिए, वरना फिर क्या फ़ायदा। इंसान कहीं ना कहीं एक कुएं के मेंढक जैसी उसकी हालत है, क्योंकि उसको इस संसारिक की ये जो दीवार उसके आसपास बनी हुई है, माया का ये जो कुआं बना हुआ है, उसके पार उसको दिखाई देता ही नहीं, उसके पार उसको लगता है कि कुछ है ही नहीं। एक छोटी सी कहानी सद्गुरु माता जी ने अपने प्रवचनों में एक बार उसका जिक्र किया कि एक बार एक ऐसे ही कुएं के मेंढक के पास, जिसने कभी कुएं के बाहर कुछ नहीं देखा, सालों साल से उसी कुएं में छलांग लगाता है, जीवन जीता है, उसे लगता है बस यही सब कुछ है। जैसे इंसान न जाने कितनी योनियों से, कितने जन्म इसी संसार में, इसी कुएं में अपने बिता रहे हैं, इसी कुएं का राजा बनना है, इसी कुएं में पानी पीना है, इसी कुएं से हमारे सारे के सारे पैमाने हैं। तो उस कुएं के मेंढक को मिलने उसका कोई पुराना मित्र आता है बहुत समय बाद। तो वो जब उसको आके मिलता है तो वो पूछता है कि इतने समय बाद आए हो, कहाँ थे इतने साल? तो उसने कहा कि कुएं से एक बार बाहर निकला तो लगा कि थोड़ी सैर पे जाऊं, दुनिया देख के आऊं। तो घूमते घूमते एक सागर तक मैं पहुंच गया, समुद्र तक। तो उसने कहा अच्छा ये समुद्र क्या होता है? तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे समुद्र होता है विशाल, इतना कि जहाँ तक नज़र जाए उससे भी बड़ा गहरा, उसमें डुबकी लगा के आ रहा हूँ। तो वो कुएं का मेंढक कहता है अच्छा कितना बड़ा होगा? तो वो कुएं का मेंढक एक छलांग लगाता है, कहता है इतना बड़ा? तो आगे से वो दूसरा मेंढक कहता है नहीं, इससे भी बड़ा। तो कुएं वाला मेंढक कहता है अच्छा रुको, फिर वो और बड़ी छलांग लगाता है, कहता है इतना बड़ा? तो कहता है नहीं, इससे भी बहुत बड़ा। तो कुएं का मेंढक क्या करता है कि उस कुएं के एक छोर से दूसरे छोर तक छलांग लगा देता है और कहता है अब इससे क्या बड़ा होगा, इतना बड़ा? तो कहते नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। तो कुएं का मेंढक आगे से कहता है, चलो पागल किसी और को बनाना, सागर की बातें किसी उसके साथ करना जिसको कुछ अकल नहीं है दुनियादारी की। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि इस कुएं से बड़ा क्या होता है। यही हाल है इंसान का। जब कोई आवाज़ देता है, संत आते हैं कि जाग जाओ, तो इंसान कहता है जगाने की बातें किसी और से करना। हम तो बहुत जागे हुए हैं, जागे हुए हैं इसलिए तो सुबह सुबह आके दुकान पे बैठे हैं, जागे हुए हैं इसलिए तो इतने साल से पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, जागे हुए हैं इसलिए तो इतनी महंगी गाड़ी चला रहे हैं, जागे हुए हैं इसलिए तो पता है कि अभी कितना कुछ और बाकी है। बस इतना ही फ़र्क कुएं के मेंढक का और उस मेंढक का जो उस कुएं के बाहर का संसार देख के आ चुका है। तो युगों युगों से संतों ने, गुरुओं ने यही चेष्टा की है कि ये कहाँ अपना जीवन इतने छोटे से दायरे में बर्बाद कर रहा है इंसान। ये बहुत करुणा है सदगुरु के दिल में, इसलिए ये पैगाम मानवता को दिया जाता है। बहुत प्रेम है मानवता के लिए कि अपने जीवन का जो संभावना है, कि इंसान जो तेरी संभावना है तो उसको प्राप्त कर ले, तो पूरा हो जा। कहीं ऐसे ना हो कि इस कुएं के अंदर पूरा जीवन बीत जाए और फिर तू कहे कि क्या इसके बाहर भी कुछ था जो मैं देख सकता था। तो इंसान अक्सर बहुत देरी कर देता है इस बात पर विश्वास करने की, इस बात पे जोर देने की, गौर करने की। और फिर जिनके जीवन में सदगुरु की कृपा होती है, जो उस कुएं के बाहर आके देख पाते हैं, तो उन्हें ये सत्य जब प्राप्त होता है, ये ब्रह्म ज्ञान जब प्राप्त होता है, तो उनके जीवन में फिर एक ऐसा परिवर्तन आता है कि सफलता और विफलता के सारे पैमाने बदल जाते हैं। संसार की इस दौड़ में रहकर भी वो इस दौड़ से बहुत परे हो जाते हैं। ये सारी उपलब्धियां जीवन में आ भी जाएं, तब भी जीवन की सफलता इन उपलब्धियों पर उनकी निर्धारित नहीं होती। जीवन का सारे का सारा आधार इस सत्य पर हो जाता है, परमात्मा पर हो जाता है, सदगुरु के चरणों की भक्ति पर हो जाता है। जीवन फिर उसी जीवन में जिसमें मैं हर पल नुक्स निकालता था कि ये कमी है, ये कम रह गया, वो कम रह गया, उसी जीवन में सिर्फ और सिर्फ शुक्राना आ जाता है। तो जीवन की जब ऐसी दशा हो जाती है, इतना परिवर्तन आ जाता है, तो फिर वो इंसान भी फिर जा के कि इस कुएं से बाहर आओ, बहुत बड़ा विशाल परमात्मा तुम इतने से नहीं हो जितना तुमने अपने आप को समझा हुआ है, बहुत विशाल तुम्हारा स्वरूप है, खुद को पहचानो, इस परमात्मा को जानो, फिर उसके ज़रिए खुद को भी पहचान लो और फिर इस जीवन को जियो, फिर आनंदमय कर लो अपनी इस जीवन यात्रा को, फिर यूँ परेशान होना बंद कर दो, फिर यूँ बोझ उठाना बंद कर दो, फिर एक ऐसा जीवन अपनी झोली में ले लो जिसकी शायद कल्पना भी तुम नहीं कर सकते जब तक इस जीवन को पा नहीं लेते। दास अक्सर एक बात कहता है कि बूंद जब तक सागर में नहीं मिल जाती, तब तक बूंद इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि सागर क्या है, वो कल्पना भी नहीं कर सकती कि सागर क्या हो सकता है। पर साथ ही साथ बूंद में खुद सागर होने की संभावना होती है। हर बूंद सागर हो सकती है, पर जब तक सागर नहीं हो जाती, तब तक इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि सागर क्या होता है, कितना विशाल होता है। उस बूंद को हमेशा अपना अस्तित्व उस बूंद की तरह दिखेगा जब तक वो सागर नहीं हो जाती। इसी प्रकार इंसान को भी सदगुरु ये मौका बख्शते हैं कि तू अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता कि तेरा असली स्वरूप क्या है। तो ये पांच तत्व का शरीर अपने आप को जो समझे बैठा है, तेरा अस्तित्व ये नहीं है। तो इस बूंद को इस परमात्मा रूपी सागर में मिला देते हैं। तो इसलिए फिर कहा जाता है कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ये आप निरंकार कर सकते हैं हर इंसान को, ये क्षमता है सद्गुरु की, ये कृपा है सद्गुरु की। तो दास यही अरदास करना चाहेगा कि जिन जिन के जीवन में, जिन जिन की झोली में ये दात सद्गुरु की कृपा से आई है, इसकी कदर हम डाल सकें, इसको जीवन में इस प्रकार उतार सकें कि जीवन से हर पल ये सच्चाई वाली झलक आए, परमात्मा वाले गुण जिनकी हम बात करते हैं, मिलवर्तन, भाईचारा, सहनशीलता, प्रेम, नम्रता, ये जीवन चलता फिरता प्रचार बन जाए, मन वचन कर्म से एक। और जो अभी वंचित हैं इस दात से, उनसे भी इतना सा ही अनुरोध कि अगर इस परमात्मा को प्राप्त करने की, इस सच को प्राप्त करने की इच्छा, श्रद्धा अगर है, तो ये प्राप्ति ज़रूर हो सकती है। और ये वो सच्चाई है, ये वो परमात्मा है, जैसे सद्गुरु माता जी अक्सर कहते हैं कि ये सच्चाई सिर्फ उसे सच्चाई कहा जा सकता है जो हर वक्त हर पल सच है। ऐसा नहीं कि कुछ साल पहले सच था और आज वो सच बदल गया है। जैसे मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ये आज के समय की सच्चाई है। आज से 30-40 साल पहले ये कल्पना भी शायद थोड़े ही लोग कर सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसा कुछ बदलने वाला सच, जैसे इस वक्त ये रात्रि का समय, सुबह सूरज चढ़ जाएगा तो रोशनी हो जाएगी, तो ऐसी बदलने वाली सच्चाई नहीं। हर पल में, हर क्षण में अटल सच्चाई है, सच और होगा भी सच। इस सच्चाई का जो दर्शन, बोध, ये जो सद्गुरु की कृपा से हो सकता है, तो यही अनुरोध कि जिनकी झोली इस प्राप्ति से खाली है, इसको अवश्य प्राप्त करके अपना जीवन सफल कर लें। सात संग जी प्यार से कहना, धन्यवाद।